Krishna Prishthaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunnavadi Paschata Desha Tarine Gurave Gaura Chandraya Radhika Tadalyai Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udiraye Nashta Praeshwa Bhadresho Nityam Bhagavata Sivaya Bhagavati Uttama Shlokir Bhaktir Bhavati Naishtaki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya cha Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabho Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Antarashtra Krishna Bhavanamrita Sangh Sanstapika Acharya Sri Krishna Kripa Murti Abhacharanar Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Kiskan Stapna ke 51 saal mein 51 saal chal raha hai aap sab Srila Prabhupada Adhyatmik Kendra Surat mein Pratah Srimad Bhagavat ke sarvan ke liye padhare hain aap sab ka swagat hai Srimad Bhagavat Mahapuran ke pehle skand mein चौथे अध्याय में नारद और व्यास संवाद और इस संवाद के पीछे जो उद्देश्य है वो भागवत के अवतार भागवत का अवतार कब कहां किसकी प्रेरणा और किसके द्वारा हुआ इस प्रश्न के उत्तर के अंतर्गत ये चार पांच और छह अध्याय तो हमने चौथा अध्याय तो पूरा किया था जिसमें व्यास देव का प्रयास कलयुग के लोगों को कलयुग के अवगुणों से बचाने के लिए शास्त्रों को सरल करके एक वेद को चार में विभाजित किया, फिर उसके लिए भी उनको समझाने के लिए पुराण आदि का भी रचना किया, रचना नहीं किया, प्रकट किए, और फिर महाभारत जैसे पंचम वेद को भी तैयार किया, फिर भी असंतुष्ट था। और उस समय नारद जी उनके गुरुदेव आए, और फिर कल हमने ये श्रवण किया कि नारद जी का सम्मान करके आसन पे सुखपूर्वक बिठाया, तो नारद जी ने उनसे कहा कि आप इतने बड़े महान पराशर के पुत्र और बड़े साधन युक्त संपन्न हैं, और आपने महाभारत जैसा और वेदांत सूत्र जैसा महा ग्रंथ, महान ग्रंथों को लोक कल्याण के लिए प्रकट किया है, फिर भी आप असंतुष्ट दिख रहे, कारण क्या है? तो व्यासदेव ने कहा, गुरुदेव आप सब जानते हैं, अगाध बोध हैं, आपने भगवान का शरण लिया हुआ है तो सब रहस्य जानते हैं, और सूर्य की तरह सब जगह जा सकते हैं, हवा की तरह किसी भी बहुत गुप्त स्थान पे भी पहुंच सकते हैं, तो आप मेरे हृदय में देखिए कि मेरे अभाव का मूल कारण क्या है। मैंने बड़ा प्रयास किया है, साधन संपन्न हूं, वेद यज्ञ आदि सब किया है, इंद्रियों को नियंत्रण में रखा है, फिर भी कौन सी कमी मुझ में रह गई है, आप कृपा करके मुझे बताइए। तो नारद जी ने उनको उत्तर देते हुए कहा कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, बड़े महान अच्छे शास्त्रों को प्रकाशित किया है, जन का कल्याण करना चाहा है, परंतु आपने जितना शास्त्रों में कर्म कांड लिखा है उतना भगवान वासुदेव की महिमा नहीं गाई है। आप में ज्ञान की कमी नहीं है, लेकिन आपने भगवान की महिमा को बहुत ही विधिवत किसी एक स्थान पे नहीं कहा है, ये असल में आपके असंतुष्टि का कारण है। अब इस क्रम में हम आगे आज श्रवण करने जा रहे हैं, मेरे ख्याल में ये कौन सा नवा श्लोक है, ये नवा है ना, ओके नवा पढ़ते हैं। तो 1-5-9 श्लोक से आगे चलेंगे। यथा धर्माद्यश्च अर्था मोने वर्यानुकीर्तितः न यथा वासुदेवस्य महिमा हे अनुवर्णितः। यथा जितना, जैसे धर्म आदेश, धर्म आदि का मतलब चार पुरुषार्थ, चार पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष, जितना आपने इन चार पुरुषार्थों का वर्णन किया है उतना आपने वासुदेव की मेहमाना का वर्णन नहीं किया है, लेकिन इनमें शब्द थोड़े और रहस्यमय है। अनुकीर्तित, अनुवर्णित, अनु शब्द आने से यह सिद्ध होता है कि यह सब कुछ वासुदेव की अपनी कृति नहीं है, यह पहले से है और वासुदेव ने उसको प्रकट, व्यासदेव ने उसको प्रकट किया है। अनु शब्द की परिभाषा है कि कोई चीज पहले थी उसको इसने अनुकीर्ति का मतलब, पहले कीर्ति पहले ही थी, उसने उनको पुनः प्रकट किया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात सिद्ध होती है कि ऐसा नहीं है कि सब कोई व्यासदेव की अपनी कृति है, व्यासदेव ने जो चीज पहले थी अप्रकट हो गई थी उसको पुनः प्रकट किया है। तो अनु शब्द बहुत महत्वपूर्ण होता है। अनुगामी का मतलब किसके पीछे चलना, अनुकीर्ति का मतलब पहले जो कीर्ति थी उसको आपने पुनः कीर्ति गाई है। अनुवर्णित, अभी अनुवर्णित करो का मतलब जैसे पहले वर्णन है वैसे ही वर्णन करो। तो ये एक सूचक शब्द है परंपरा का, अनु शब्द महत्वपूर्ण है। तो आपने धर्म आदि का आदेश चार था, अर्थ का या दूसरा जो आखिरी अर्थ है इसका मतलब जो जो आपका उद्देश्य था वो इन चार चीजों का आपने, तो बहुत मुनि मुनि वर्य बड़े महान मुनि हो आप, मुनि वर्य बहुत बड़े महान मुनि हो, आपको महान चीज भूल गई और आपने उससे छोटी चीजों का वर्णन कर दिया। मुनि वर्य आप मुनियों में श्रेष्ठ हो तो श्रेष्ठ चीज का वर्णन करना चाहिए था ना। ये मुनि वर्य कहने का मतलब है कि जो जो वर्ण योग्य चीज थी उसका तो वर्णन किया नहीं है, और जो ये चार चीजों को दूसरे श्लोक भागवत में कैतव धर्म कहा है, धर्म अर्थ काम मोक्ष को दूसरे अध्याय श्लोक में, पहले अध्याय के दूसरे श्लोक में धर्म प्रोजित कैतव निर्मत्सराणाम सतम कैतव धर्म कहा है। कैतव धर्म का मतलब है जो धर्म लोभ लालच की तरफ हमको ले जाए। लोभ लालच किसका? स्वर्ग का लोभ, संसार के सुख का लोभ, स्वर्ग के सुख का लोभ, ये हो गया लोभ। तो जो सिद्धांत है शास्त्र में, एक सिद्धांत होता है रोचक सिद्धांत। रोचक सिद्धांत किसके लिए होता है? जैसे बच्चों को स्कूल भेजना होता है तो बोले तुम्हें खिलौना लेके देंगे, तुम्हें टॉफी लेके देंगे, तुम्हारे को साइकिल लेके देंगे, ये रोचक हो गया। उद्देश्य पढ़ना है लेकिन उसको कोई थोड़ा सा लोभ देते हैं ताकि वो काम करें। एक भयावक धर्म होता है, नहीं करोगे तो ये दंड मिलेगा, नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, ये भय वाला धर्म है। प्रायः शास्त्रों के अंदर ये दो धर्म है, एक रोचक धर्म है और भय वाला धर्म है। ये नहीं करोगे तो नरक में जाओगे और ये करोगे तो स्वर्ग में जाओगे। लेकिन तीसरा जिसको भागवत धर्म कहते हैं वो यथारथ धर्म। तो यथारथ धर्म का वर्णन आपने बहुत कम किया है। रोचक धर्म बहुत और भयावक भय वाला धर्म और भोग वाले धर्म का तो वर्णन बहुत कर दिया, लेकिन जो यथारथ धर्म है, यथारथ ये है कि जीव आत्मा का भगवान के साथ नित्य संबंध है और भगवान की महिमा गाकर भगवान के साथ जाके अपने सुख को, सेवा को प्राप्त कर सके, ये इस धर्म का वर्णन आपने इतना महत्वपूर्ण नहीं किया है। तो जितना आपने धर्म अर्थ, तो धर्म अर्थ की परिभाषा ये है कि धर्म पहले इसमें होता है धर्म, इसका मतलब धर्म के ऊपर चलकर। धर्म होता है हृदय में, धर्म अंतःकरण की वृत्ति है। अर्थ होता है बाहर, बाहर का मतलब शरीर में नहीं, अर्थ बाहर होता है, अर्थ का मतलब धन बाहर होता है। और उसके बाद है काम, काम का मतलब इच्छाएं, ये इंद्रियों में होती हैं। काम इंद्रियों मन, इसका स्थान काम का ये है। और स्वरूप और जो जो मोक्ष है वो तो हमारा स्वरूप है, वो आत्मा के स्तर की बात है, अपने स्वरूप में स्थित होने को मोक्ष कहते हैं। तो प्रायः जो बाहर चीज है अर्थ, उसका कितना भी प्रयास करो तो बाहर ही रहेगी, अंदर तो नहीं आ सकती। अर्थ है ही बाहर और वो हमेशा परिवर्तन, जो बाहर चीज है वो परिवर्तनशील है। और धर्म अंतः अंदर है, अर्थ बाहर रखने की चीज है, धर्म अंदर रखने की चीज है। इसको ऐसे मैनेजमेंट में भी, इकोनॉमिक्स में पढ़ाते हैं कि अर्थ को बाहर लगाओ तो कमाएगा, पैसा बाहर लगाओगे तो कमाएगा, अंदर रखने से कुछ नहीं होगा। अर्थ बाहर लगाओ तो कमाएगा, और धर्म आपके अंदर की चीजें, आपका अंदर रखने की चीजें। अब दुनिया में हो क्या रहा है, पैसा लोग छुपा रहे हैं और धर्म का भाग पब्लिसिटी कर रहे हैं, उल्टा हो गया सारा। पहले इसका उदाहरण हमको किसी एक वाइस चांसलर ने दिया था, प्रभुपाद के 100 साल के वर्ष में जब कॉलेज यूनिवर्सिटी में डिबेट कंपटीशन कराई थी, तो कई यूनिवर्सिटी में जाना हुआ था, तो एक बहुत अच्छे वाइस चांसलर ने कहा, देखो अर्थ बाहर लगाने की चीज है, धर्म अंदर स्वयं साधन करने की चीज है। लेकिन दुनिया में ये दोनों उल्टा हो रहा है, धर्म लोग छुपा, अर्थ लोग छुपा रहे हैं और धर्म का बाहर पब्लिसिटी कर रहे हैं। फिर उन्होंने उधार दिया था इसलिए लाभ नहीं हो रहा, एक उदाहरण दिया था, कभी हमने आपको दिया होगा पहले, आदमी को था बुखार तो डॉक्टर को दिखाने जा रहा था, रास्ते में गिर पड़ा, पांव में मोच आ गई, तो डॉक्टर को कहा मेरे को बुखार तो 3 दिन से है, आते हुए गिर पड़ा हूं तो मोच आ गई है। तो डॉक्टर ने 2 दवाई दे दी, एक बोला बुखार की पी लेना और मोच की बाहर मालिश करना। वो घर गया, उसको पन्ने बदल गए, वो दवाई जो बुखार वाली है उसको पांव पे लगा रहा था और मोच वाली को पिया, ना बुखार गया ना दर्द गया। डॉक्टर के पास 7 दिन के बाद आके कहता डॉक्टर दवाई ने कुछ पाल लाभ तो किया नहीं। बोला दवाई तो दोनों अच्छी थी, लाभ कैसे नहीं किया? बोला कैसे पिया? बोला ये पिया और ये लगाया, बोला यही तो उल्टा किया, अब तुमको कहां से सुख मिलेगा, कहां दर्द जाएगा? तो धन को बाहर लगाना चाहिए उसको छुपा रहे हैं, और धर्म का साधन कर ले उसका बाहर बड़ा बड़ा बोर्ड लगा रहे हैं कि ये हो रहा है हमारा, ये धर्म हो रहा है हमारा, इतना कुंड का यज्ञ हो रहा है हमारा, ये हो रहा है। अरे ये करने का नहीं है, ये अंदर बैठ के करने का है। तो ये धर्म और अर्थ की उल्टी गंगा चल रही है। दूसरा सिद्धांत है धर्म काय के लिए है, धर्म का पालन क्यों करना चाहिए, ये प्रश्न है। धर्म पहला है, कैसे पालन करना चाहिए? लोगों ने धर्म को भुला दिया, अर्थ को पकड़ लिया, मोक्ष को भुला दिया, काम को पकड़ लिया। 4 में से 2 चीजें तो है नहीं संसार में अभी, न कोई मोक्ष के लिए काम करता है, न धर्म के ऊपर चलता है, केवल अर्थ की व्यवस्था और भोग के पीछे भाग रहा है। तो 2 चीजें तो वैसे भी लुप्त हो गई। तो धर्म काय के लिए होना चाहिए? भागवत क्या कहती है, धर्म काय के लिए होना चाहिए? धर्म अपवर्गस्य, अपवर्ग का अर्थ होता है मुक्ति, अपवर्ग का अर्थ होता है दुख तकलीफ ताप संताप परेशानी परिश्रम और मृत्यु से मुक्त होने के लिए। धर्म होना चाहिए अपवर्ग के लिए, पवर्ग प फ ब भ म और अपवर्ग इसके उल्टा, परिश्रम झाग मुंह से निकले फैन मृत्यु, ये संसार का धर्म है। लेकिन धर्म काय के लिए होना चाहिए? मुक्ति के लिए। धर्म अर्थ के लिए नहीं होना चाहिए, धर्म धन के लिए नहीं होना चाहिए। लोग सारे आजकल धर्म में मंदिर में क्यों जाते हैं? धन के लिए। धर्म धन के लिए नहीं है, धर्म अर्थ के लिए नहीं है, धर्म मुक्ति के लिए। तो अर्थ काय के लिए? क्या अर्थ भोग के लिए है? धन है तो भोग करेंगे? नहीं, अर्थ धर्मस्य, अर्थ को आवश्यकता के अधिक धर्म के कार्य में लगाना चाहिए, अर्थ धर्म में लगना चाहिए। धन है तो जरूरत से ज्यादा धर्म की सेवा में लगना चाहिए। अर्थ काम के लिए नहीं है, अर्थ भोग के लिए नहीं है, तो फिर काम काय के लिए, भोग काय के लिए, इच्छाएं क्यों है? तो भागवत कहती है काम जीवन निर्वाह, हमारे को इतनी इच्छाएं करनी चाहिए जिससे जीवन चल जाए। आत्मा और शरीर का ठीक तरह से काम चले इतना इच्छा रखनी चाहिए, जीवन का निर्वाह होना चाहिए। तो बोलो जीवन काय के लिए? तो भागवत कहती है जीवन तत्व जिज्ञासा, जीवन है तत्व को जानने के लिए। तत्व का अर्थ है कि जो सदा रहने वाली चीज है उसको जानो, जो चीज जाने वाली है उसके पीछे मत भागो। तो भागवत में पूछा गया तत्व क्या है, तुमने भगवान ब्रह्म परमेत्मेति भगवान इति शब्दते, वो तत्व है एक भगवान जो अद्वैय तप्त तत्व है, अद्वैय जिस दो नहीं एक है, अद्वैय तप्त जो है, जो अद्वैय तत्व जो है उसको ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, उसको ज्ञानी ब्रह्म के नाम से जानते हैं, योगी परमात्मा से नाम के नाम से जानते हैं, और भक्त भगवान के नाम से जानते हैं, ये तत्व है। तो ये 4 जो पुरुषार्थ हैं इनका अंत तो गवत्वा अर्थ है भगवान को जानना। तो बोला मुक्ति काय के लिए? वो तो हमारा स्वरूप ही है, अन्य स्वरूप त्यज्य स्वरूप स्थितः मुक्ति उच्यते, अन्य स्वरूप का त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित होना बाकी सब डेजिग्नेशन परित्याग करके और अपनी असली स्वरूप में स्वभाव में स्थित होना, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, इसमें स्थित होना, तो जरूर जीव का स्वरूप नित्य भगवान का सेवक है। अब हम दुनिया की सेवा में लगे हुए हैं, यहां से भगवान की सेवा की तरफ मुड़ना ये मुक्ति है और ये जीवन मुक्ति है। जीते जी मरने, ये जीते जी वाली मुक्ति है, मरने वाली मुक्ति नहीं। तो आपने व्यास देव ये धर्म अर्थ काम मोक्ष का तो बहुत वर्णन किया है और उतनी मात्रा में भगवान वासुदेव की महिमा का अनुवर्णन नहीं किया है। ये व्यास देव के असंतुष्टि का कारण नारद जी ने बताया। तो व्यास देव के सारी रचनाओं में प्रायः अधिकांश धर्म अर्थ काम मोक्ष का वर्णन है। इन चारों से ऊपर किस चीज का वर्णन करे, वासुदेव महिमा, उसका अर्थ है भक्ति। भक्ति का इतना विस्तार से और इतना प्रामिनंटली मुख्यता से वर्णन नहीं है, ये व्यासदेव की कृति में त्रुटि है। नारद कहते हैं, उनके गुरुदेव कहते हैं, ये आपके सारे कार्य में कमी रह गई है। तो इसके प्रभुपाद जी ने तात्पर्य का पहला शब्द लिखा है, प्रॉम्प्ट डायग्नोसिस ऑफ नारद इज वंस डिक्लेयर्ड। नारद ने व्यासदेव की बीमारी का पहचान कर ली और बता दिया कि आपकी त्रुटि का कारण क्या है। तो आपने ये चारों चीजों का अपन ने कर लिया वर्णन, और इसके बाद इस तात्पर्य में एक श्लोक भगवद गीता का प्रभुपाद जी ने उद्धृत किया है। अगर कोई उस श्लोक को इसमें ढूंढ सकता है तो बड़ा अच्छा होगा। आपको दो मिनट देते हैं, आप इसका तात्पर्य पढ़ के बताओ कि कौन सा श्लोक प्रभुपाद ने यहां कोट किया। हाँ जी बोलिए। ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मान सोचति न कांक्षति समस्त सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते परम। तात्पर्य सारा प्रभुपाद जी का इस श्लोक के ऊपर आधारित है। और इस श्लोक में है तो ये महाभारत का श्लोक, महाभारत के अंदर भगवत गीता है उसका श्लोक है, लेकिन एक श्लोक मिला है सारी महाभारत में। इसका अर्थ ये है कि इतना कम है। अब इस श्लोक में भाव क्या है कि जिसको आप मुक्ति कहते हैं उस मुक्ति के स्तर के बाद भक्ति शुरू होती है। भक्ति शुरू कहां से होती है, बोला मुक्ति के बाद होती है। जब ब्रह्म के स्तर के ऊपर कोई पहुंच जाएगा तो फिर उसको दो बातें, या प्रभुपाद ने पैराफ्रेज बहुत अच्छी अंग्रेजी लैंग्वेज में किया है, न कांक्षति हाँ ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा, पहले तो वो बहुत बड़ा आनंद में रहेगा, न सोचती न कांक्षति, किसी चीज के जाने का दुख नहीं होगा और किसी चीज के आने का सुख नहीं होगा, कोई जरूरत नहीं है, तो आए या नहीं जाए कोई अर्थ उसको कोई अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि वो भौतिक स्तर से ऊपर चलेगा, तब उसको पराभक्ति प्राप्त होती है। भक्ति लभते भक्तिम पराम, पराभक्ति प्राप्त होती है। पराभक्ति का मतलब अभी जो हम भक्ति कर रहे हैं ये जीव भूत स्तर की भक्ति है, इसके बाद ब्रह्म भूत स्तर की भक्ति है। तो परम भक्ति की प्राप्ति होती है ब्रह्म भूत स्तर के ऊपर पहुंचने के बाद। अब ये दो शब्दों को प्रभुपाद ने कैसा लिखा है देखो, वन शुड प्रोग्रेस बाय अटेनिंग न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलिटी एंड इक्वलिटी इन रिलेटिव वर्ल्ड, न्यूट्रलिटी एंड इक्वलिटी, ये किसका अर्थ लिखा है, ब्रह्मभूता के श्लोक में न सोचती न कांक्षती, ऐसा अर्थ है जो इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग हैं उनको अच्छा लगेगा। अरे वाह, ये तो इक्वालिटी की बात कर रहा है, न्यूट्रलिटी की बात कर रहा है। ये भाषा प्रभुपाद जी की बहुत बड़ी सुंदर यहां है। और अब आगे के श्लोक में प्रवेश करते हैं, बड़ा सिद्धांत का श्लोक है। न यद वचश्चित्र पदम हरेर यशो जगत प्रवृत्तम प्रगणित करहचेत तदवायसम तीर्थम उशंति मानसा न यत्र हंसा निर्मन्त्य उषित कक्षया। अब ऐसा शास्त्र जिसके अंदर वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं हो, और कितना सुंदर कविता के साथ बहुत अलंकार के साथ भी सजा हो, तो उस शास्त्र की ओर जो परमहंस हैं, मुक्त जीव है, वो आकर्षित नहीं होते हैं। और ऐसे शास्त्र के पीछे, ऐसे शास्त्र तीर्थ किसके लिए बनते हैं? कौआ जैसे लोगों के लिए। अब शब्दों का अर्थ, न यत वचस, न यत जहां नहीं है, वचस चित्र पदम, वचस का मतलब वाक्य है और चित्र पद का मतलब बहुत अच्छी कविता, अलंकार हो। और अंग्रेजी में इसका ट्रांसलेशन प्रभुपाद का वर्ल्ड जगलरी यहां लिखा है, यह असल में श्रीधर स्वामी की टीका का शब्द है, वर्ल्ड जगलरी। शब्दों को बहुत बड़ा सुंदर अलंकृत रखा हो, हरेर यश, उसमें हरि का यश ना हो, भगवान की महिमा ना हो, तो हरि की महिमा नहीं है तो क्या फर्क पड़ेगा? हरि की महिमा होनी चाहिए ना, पहले हरि की महिमा नहीं होगी तो क्या होगा, अथवा हरि की महिमा होने से लाभ क्या होता? तो हरि की महिमा का लाभ बता रहे हैं दूसरी लाइन में। हरि की महिमा का लाभ है, जगत प्रवृत्तम प्रगणित करहचेत, जगत के अंदर प्रवृत्तम सेंक्टिफाइड, पवित्र हो जाता है। हरि का जस होगा तो जगत पवित्र हो जाएगा, और हरि का जस नहीं होना तो लोगों की जीवन में पवित्रता नहीं आएगी, शुद्धि नहीं आएगी। प्रगणित, तो हरि के यश होने से क्या लाभ है और न होने से क्या हानि है? अगर शास्त्र में हरि का जस नहीं है तो क्या होगा? लोगों के हृदय शुद्ध नहीं होंगे, लोगों के हृदय में कामनाएं और बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। और अगर हरि का यश होगा तो हृदय शुद्ध होगा, और नहीं होगा तो हृदय जैसे है वैसे रहेगा और कामनाएं और तीव्र बढ़ेंगी। और ऐसी जगह के ऊपर, मतलब ऐसी जगह अगर हरि का जश नहीं है तो तद वायसम तीर्थम उशंति मानस, तथ वायसम तीर्थम, तीर्थ का अर्थ होता है पवित्र करने की जगह। लेकिन ऐसे शास्त्र जिसमें कविता बहुत अच्छी हो, अलंकार बहुत अच्छे हो, बहुत ही लुभावने शब्दों के अंदर लिखा हो, लेकिन उसमें हरि का यश नहीं हो, तो उधर आकर्षित कौन होंगे? वायासम, वायासम, वायासम का मतलब कौए, वहां कौए जाएंगे और कौओं को बहुत अच्छा लगेगा, वाह बहुत अच्छा है। मानसा यत्र न हंसा निमंती, और जो साधु है, मानसा मननशील जो साधु है, जो परमहंस है, ऐसे शास्त्र में रुचि नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? बोला वो तो है उषित कक्षाया, वो तो आध्यात्मिक जगत के लोग हैं, वो ऐसे काम की इच्छा वाले शास्त्रों में क्यों आकर्षित होंगे? इस श्लोक का भाव क्या है? इसमें मेरे को आ रहा था भगवद गीता का एक श्लोक, इस श्लोक के साथ जोड़ने के लिए मन में, कौन सा जो श्लोक है? दूसरे अध्याय भगवद गीता का है, सारी भगवद गीता के दूसरे अध्याय का श्लोक है। याम पुष्पितम वाचम प्रवर्तन्ति पंडिताः, याम पुष्पितम वाक्यम, वेद के अंदर बहुत ही फ्लावरी लैंग्वेज है पुष्पितम, और यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को वहां क्या कह रहे हैं? क्या श्लोक है दूसरे अध्याय का? त्रयी वेद्या त्रैगुण्य विश्या वेदा निस्त्रगुणो भव अर्जुन, इससे आगे क्या है वेदों के लिए? हाँ, पुष्पितम वाक्यम वेदवाद रताः, वेदवाद रता का प्रभुपाद ने क्या ट्रांसलेशन लिखा? सो कॉल्ड वेदांतिस्ट, सो कॉल्ड वहां लिखा है वेदवाद रताः, वेद की बाद में हम वेद करते हैं, वेद को पढ़ते हैं, ऐसे लोग वेद की फ्लावरी लैंग्वेज से आकर्षित होते हैं, लेकिन उसमें तीन गुणों के अंतर्गत ज्यादा ज्यादा स्वर्ग तक जाने की समाचार है। त्रैगुण्य विषय, वेदों का विषय तीनों गुणों के अंतर्गत है। त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रगुणो भव अर्जुन, अर्जुन तुम तीनों गुणों से ऊपर आओ। और छठे अध्याय भगवत गीता में जो योग भ्रष्ट है उनके लिए तो ये लिखा है कि वो वेद का अतिक्रमण करते हैं, ब्रह्म अतिक्रमण करके, इसका मतलब दोबारा जब इस धरती के ऊपर आएंगे तो इसके कर्म कांड वाली चीज की तरफ देखेंगे नहीं, वेद का अतिक्रमण कर देंगे, वहां शब्द है उसका अर्थ है वेद का अतिक्रमण कर देंगे। ये छठे अध्याय के जहां अथवा योगी नामे कुले भवती धीमताम, इसके बाद के तीन श्लोकों के बाद आ जाएगा। हाँ, उसके बाद शब्द ब्रह्म अति वर्तते, शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर देंगे, शब्द ब्रह्म वेद है, शब्द ब्रह्म अति वर्तते उसको अतिक्रमण कर देंगे, उसको छोड़ देंगे, उसकी जरूरत नहीं है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, अरे भाई वेद पढ़ो, नहीं जरूरत नहीं है, वो पहले पढ़ दी, वो पढ़ के तो यहां पहुंचे। वेद का अतिक्रमण कर देंगे, ये शब्द अतिक्रमण करना, ये छठे अध्याय का शब्द जो है इसका ब्रह्म अतिवर्तते। हाँ, ब्रह्म ब्रह्म अतिवर्तते, उनका वर्तन ब्रह्म से ऊपर, ब्रह्म शब्द का अतिक्रमण कर देंगे, नहीं चाहिए, आदर करेंगे लेकिन उसका पालन नहीं करेंगे। जैसे देवता का आदर करना चाहिए लेकिन पूजा नहीं करनी चाहिए, वेद का आदर करना चाहिए लेकिन वो स्वाहा नहीं करने की जरूरत है, उसके प्रमाण को मानना चाहिए, ठीक है किसी के काम का है, लेकिन व्यास देव जैसे स्तर के भगवत अवतारों की वाणी में वो कैसे लोगों को पसंद आएगा? कौए जैसे लोगों को, कौए जैसे लोग। और प्रभुपाद जी का तात्पर्य में क्या लिखा है कि दो प्रकार के, जैसे पक्षी, पक्षियों में देखो दो प्रकार के, एक कौए है एक हंस है, और कौए कहां बैठेंगे? जहां कचरा होगा, जहां जहां सड़ा हुआ माल पड़ा होगा या कोई मुर्दा मरा हुआ होगा वहां जाके बैठेंगे, और हंस मानसरोवर में बैठेंगे। तो जैसे पक्षियों में ऐसे ऐसे मानव भी दो प्रकार के हैं, एक मानव ऐसे हैं जहां भोग होगा वहां भागेंगे, एक आदमी है कि शराब के दुकान पे भागेगा, जहां जुआ होगी वहां भागेगा, जहां व्यभिचार होगा वहां जाएंगे, और कुछ लोग ऐसे हैं जहां मंदिर होगा वहां जाएंगे, सत्संग होगा वहां जाएंगे। तो ये विभाजन हो गया, मानव में भी ऐसे दो विभाजन है। प्रभुपाद जी आगे कहते ऐसे शास्त्रों में भी विभाजन है, कुछ शास्त्र उन लोगों को अच्छा लगते हैं जो भोग करना चाहते हैं। जैसे बाजार के अंदर जितने भी किताब मिलते लोगों की, प्रभुपाद प्रवचन में उदाहरण दे रहे थे, वो अपने एक शिष्य हाईग्रीवी का, हाईग्रीवी की लाइब्रेरी को देखो, इसके अंदर सब अच्छे किताब पढ़े हैं, और किसी और के घर में जाके किताब देखो तो उपन्यास रखे हुए हैं, और फोटो किसके घर में लगे हुए हैं, भगवान के फोटो आजकल कम है, तो नेता नेताओं के फोटो भी कम आजकल लगने शुरू हो गए, नहीं तो फिर अभिनेत्रा अभिनेत्री के फोटो लगे हुए हैं, और क्रिकेट के प्लेयर के फोटो लगे हुए हैं। तो ये आप लोगों को पहचान सकते हैं कि जिसके घर में जाते ही भगवान का मंदिर मिले, और किसी घर में जाते ही किसी एक्टर का फोटो मिले, या किसी क्रिकेट प्लेयर का फोटो मिले, या किसी नेता का फोटो मिले, तो अंदाजा लगाना चाहिए कि इसकी रुचि कौए जैसे आदमी के वाले ग्रुप में है कि हंस वाले आदमी के ग्रुप में। ये प्रभुपाद की परिभाषा ऐसी है। जैसे पक्षियों में विभाजन है, मानवों में विभाजन है, ऐसे शास्त्रों में भी विभाजन है। तो ये सिद्धांत स्थापित हो रहा है कि शास्त्र भी ऐसे है कुछ जिसके अंदर, और बहुत से लोग आप देखेंगे तो वही देवी देवता वाली पूजा के शास्त्र के पीछे भागेंगे, और सीधा भगवत गीता के सुनने के लिए आने वाले बहुत कम हैं। क्यों? क्योंकि भगवत गीता कहते हैं सर्वधर्मन परित्याज, अरे सब कुछ छोड़ के आओ, और हम छोड़ना नहीं है, हमको तो बढ़ाने के लिए आना है। बोले जी वहां बढ़ाने की बात ही नहीं कर रही है भगवत गीता, ये तो कहती है सब कुछ छोड़ो, तो हमको तो वहां जाना है जहां कुछ मिलना है, तो जहां छोड़ने वाली जगह पे क्यों जाए। लेकिन उनको समझ में नहीं आता है कि ये सब छोड़ने से जो दुनिया को देने वाला है वो मिलता है, ये दुनिया को छोड़ने से दुनिया बनाने वाला मिलता है, और दुनिया को पकड़ने वाले से दुनिया भी जाती है और बनाने वाला हाथ ही नहीं आता है। अब इतना मूर्ख उनको समझ में नहीं आता है, उनको तत्काल लाभ चाहिए। ये आप देख आगे वाले श्लोकों में तो इसका प्रभुपाद जी ने ये जो प्रभुपाद का ये तात्पर्य ये इस्कान की स्थापना से पहले का है, अभी इस्कान बना ही नहीं था, ये तो वृंदावन के अंदर बैठे हुए प्रभुपाद ने 60s में लिखा है, ये समझो 64-5, ये 64-5 के समय का लिखा हुआ है, 5 भी नहीं है अभी तक, 4 का 64 का है। और उस वक्त में जो स्थितियां प्रभुपाद लिखे वो आज उससे 100 गुना ज्यादा बुरी हैं, लेकिन उस वक्त इतनी बुरी दिख रही है लिखने में। आगे वाले श्लोकों में साफ आएगा कि आपने इतनी देवी देवता की पूजा का विस्तार कर दिया है और वो इतना उत्साह के साथ मनाते हैं, अब उसको कहेंगे तुम भगवान की तरफ आओ, बोले नहीं यही अच्छा है, आपने इतना परेशानी पैदा कर दिया व्यासदेव के, वो कहेंगे व्यासदेव ने लिखा है हम क्या करें, वो आपका नाम लेके जब कहेंगे तब हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी होगी, इसलिए आप ही अपनी तरफ से भागवत लिख के कहो कि पहले वाला मैंने सब जो कहा था वो रद्द कर दो, सिर्फ एक पढ़ो ये कहे बोलो इसमें। ये नारद जी कहते हैं आप ये लिखो, ऐसे हमने आपको कभी उदाहरण दिया था, हमको टीचर ट्रेनिंग के लिए एक बार हमको जब हम पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे तो हमको टीचर ट्रेनिंग के लिए एक बार ले गए, तो क्या एग्जामिनेशन में सबसे बड़ी परेशानी होती है टाइम, भाई 3 घंटे में पूरा करना है, तो हाथ में पेपर आता है ना, आदमी पूरा पेपर पढ़ता नहीं है, जो पहले ऊपर देखिए उसको लिखना शुरू कर देता है, तो टाइम बचाना है ना। तो उसमें कहा हमको ये गया कि जो पहले पेपर करके देगा वो फर्स्ट नंबर आएगा, तो एक और परेशानी उन्होंने डाल दी कि जल्दी करोगे तभी फर्स्ट नंबर जल्दी हुआ ना, तो लिखा था कि प्रश्न कैसा था, 2+2 क्या होगा, -2 × 2, ये तो बच्चों के प्रश्न थे और इतना आसान था, लेकिन हम में से किसी एक ने नीचे से पढ़ना शुरू किया, उसमें लिखा था कुछ मत करो अपना साइन करके वापस दे दो, कुछ मत करो अपना साइन नाम लिख के वापस उसने दे दिया, सब आश्चर्य में आई इसने कैसे दे दिया, अभी भाई कितना भी जल्दी करे, ये तो 50 क्वेश्चन पड़े हैं भाई, 15 मिनट में ज्यादा से ज्यादा करे, इतना आसान है। सब आश्चर्यचकित हुआ और बाद में कहा देखो पहले एक बार पेपर को पढ़ लेना चाहिए कि आखिर में क्या लिखा है। आखिर में लिखा था कुछ भी नहीं करना है, बस नाम लिख दो। और ये व्यासदेव को नारद कह रहा है आप अब लिख के कहो कि कुछ नहीं पढ़ना है, बस यही पढ़ना है, ये बोलो नहीं तो लोग नहीं मानेंगे, नहीं तो लोग नहीं मानेंगे, ये आप ही घोषणा करो। ये बहुत बड़ी बात है असल में, क्योंकि पहले हमने ही कहा अभी हम ही को जाके कहना पड़ेगा, तभी आप ही ये बोलो, नहीं तो नारद सीधा कहता मैं भागवत लिखता हूं आप जाओ आराम करो। नहीं, आपको बोलना पड़ेगा क्योंकि आपने लुभावनी बातें पहले बहुत लिख दी हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसका ट्रांसलेशन पढ़ लीजिए। आपने पढ़ा तो ट्रांसलेशन में ये तीन प्रकार के, ये पशुओं की दो श्रेणियां, फिर मानवों की दो श्रेणियां, फिर पुस्तकों की दो श्रेणियां, ऐसा अब आगे वाले श्लोक को पढ़ते हैं, ग्यारहवा ना। अब इसके विपरीत कहते हैं, ये तो एक शब्द आप तात्पर्य में प्रभुपाद ने अपनी तरफ से न लिख के वो शब्द श्रीधर महाराज के को टीका से दिया है। ऐसे लोग जो गली गली में पूजा करते हैं उनके लिए शब्द क्या दिखाया, देखो प्रभुपाद प्रॉस्टिट्यूट शब्द दिखाया, देखा आप, देखिए ट्रांसलेशन में शब्द देखिए वैश्यावृत्ति है, वैश्यागामी का मतलब, अरे भगवान एक है तो फिर सब जगह भागने की क्या जरूरत है। प्रभुपाद ने एक बार कहा कि लोगों से कभी पूछते हैं भगवान कौन है, तो कोई कहता ये भगवान है, कोई कहता ये भगवान है, कोई कहता ये भगवान है, और किसी को पूछा कौन भगवान, बोले सभी भगवान है, बोले सभी भगवान है। प्रभुपाद ने कहा अगर किसी स्त्री से पूछे तुम्हारा पति कौन है और वो कहे मेरे सभी पति, ये अच्छी बात है क्या? प्रभुपाद ने उसी वक्त ये कहा कि ये कोई उत्तर दे दे स्त्री कि मेरे सब पति है तो क्या ये बात अच्छी है क्या? तो उसका अर्थ है ये क्या है, ये वैश्यावृत्ति है। तो ऐसे ही जो गली गली में पूजा करता है वैश्यावृत्ति वाली बात हो गई, ये श्रीधर स्वामी का, तो प्रभुपाद अपनी तरफ से न बोल के श्रीधर स्वामी की जो ऑथेंटिक कमेंट्री है उसको कोट कर रहे हैं, वैश्यावृत्ति है। सबके पास जाने की जरूरत नहीं है, एक जगह सभी का उद्गम स्थान है वहां चले जाओ ना, बहुत सरल सा। इसके मेरे ख्याल इसके आगे वाले में ये तात्पर्य आएगा, तो आइए आगे वाला श्लोक पढ़ते हैं। यदवाग विसर्गो जंतग्ध विपल्वो यस्मिन् प्रति श्लोकम अबध्यवती अपि नामानि अनंतस्य यशो अंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवः। अब दूसरी तरफ जो दूसरा शास्त्र है, ये शास्त्र तो हुआ जिसके अंदर हरि के गुणगान नहीं हो और केवल सुंदर शब्दों में स्वर्ग आदि का लुभावना वर्णन हो, वो परमहंस साधुओं के लिए नहीं है, वो संसारी कौए जैसे लोगों के लिए है जो भोग के पीछे भाग रहे हैं। दूसरे तरफ यदवाग विसर्गो जंतग्ध विपल्वो, लेकिन दूसरी तरफ वाक, वाक उधर वचस्थ था यहां वाक है, वहां वचस्थ चित्र पद में यहां वाक है, वाक का मतलब वो शब्द, और कौन से शब्द, विसर्ग, विसर्ग को आपको सर्ग और विसर्ग इसका ध्यान एकदम जाए, सर्ग और विसर्ग, विसर्ग सर्ग कहते हैं क्रिएशन, विसर्ग कहते हैं सेकेंडरी क्रिएशन, यहां विसर्ग लिख के भी बहुत बुद्धिमानी का शब्द लिखा है, ये शब्द अपने नहीं है, विसर्ग का मतलब है, सर्ग का मतलब है भगवान विष्णु की क्रिएशन, और विसर्ग का मतलब है विष्णु के दिए हुए चीजों से ब्रह्मा जो क्रिएट करे, तो विसर्ग सेकेंडरी क्रिएशन का नाम है। तो यहां जो शब्द क्रिएशन, विसर्ग का अर्थ तो वर्ड टू वर्ड में प्रभुपाद लिखा है क्रिएशन, लेकिन क्रिएशन सेकेंडरी होगी, मतलब ये शब्द अपने नहीं है, जो आचार्यों के शब्द है। ये जैसे अनु उधर है, इधर अनु की जगह पे विसर्ग उस भाव में बहुत क्लियर हो जाएगा कि अपना नहीं है ये। एक जगह मैं अभी सुन रहा था, भगवान नारायण तो आदि पुरुष है, उन्होंने पहले ये भागवत का ज्ञान किसको दिया? ब्रह्मा को। और ब्रह्मा क्या है? गुण अवतार है, तो अवतारी है ना। तो भगवान ने ही अपने एक और अवतार को यह ज्ञान दिया, और ब्रह्मा जी ने किसको दिया? नारद क्या है? अवतार है। और नारद ने किसको दिया? व्यास क्या है? इसका मतलब कि ये जो भागवत है ये भगवान की ही वाणी है, और भगवान के कृपा पात्र भक्तों के मुख से ही सुशोभित होती है। इसके लिए सामान्य व्यक्ति कहे कि मैं भागवत कहता हूं, वो मूर्ख है पहले नंबर पर। इनमें से एक भी पुरुष, एक भी सामान्य व्यक्ति नहीं है जिसको ये भागवत की परंपरा आई। इसलिए सुखदेव के लिए भी लिखा है कृष्ण सुखदेव के रूप में वहां आए, वो उसका अर्थ है कि वो भी उसी परंपरा में ऐसे का ऐसे आया है। इसका भाव ये है कि जो भागवत पुरुष हैं, भगवान से अभिन्न जिनका इंटरेस्ट है, इसको बोलते हैं एक प्रभुपाद जी की भाषा होती है वननेस इन इंटरेस्ट, वननेस इन इंटरेस्ट। बोला हम भी भगवान से एकत्व होना चाहते हैं, लेकिन उनमें लीन होना नहीं, उनके भाव से अपना भाव मिलाते हैं। वननेस इन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब है भगवान क्या चाहते हैं। भगवान चाहते हैं कि लोगों को का कल्याण हो, कृपा उनके ऊपर दया हो, उनको भगवत भावना हो, तो भक्त क्या करते हैं? वही काम करते हैं जो भगवान चाहते हैं। तो वननेस इन इंटरेस्ट को बोलते हैं भगवान से एक होना। हम भगवान से एक हो गए कैसे? भगवान के और हमारे इंटरेस्ट में कोई अंतर नहीं। और भगवान का इंटरेस्ट क्या है? मेरे भगवत गीता को श्रद्धालुओं में जाके प्रचार करो। तो भक्त क्या करता है? जहां कहां जाके भगवान के भगवत गीता का प्रचार करता है। तो इंटरेस्ट एक हो। और भगवान क्यों करते हैं ये सारा काम? क्या भगवान ने जब उपदेश दिया अर्जुन तो कहीं लिखा है कि अर्जुन ने कुछ गुरु दक्षिणा दी या कुछ पैसा लाके दिया? लिखा है क्या कहीं? हाँ, या नारद व्यासदेव को उपदेश दिया है, व्यासदेव ने कुछ दिया है क्या उसको पोटली बांध के? और परीक्षित जैसे महाराज को सुखदेव ने कुछ कथा सुनाई तो वो तो कपड़े ही नहीं पहने, उसको देंगे क्या? वो लेगा क्या? बहुत बड़ी भारी बात है असल में ये। उनके भगवान, इन सबके कथा बताने के पीछे उद्देश्य क्या था? भलाई, दया के कारण उनके ऊपर करुणा करके उनका उद्धार हो। जैसे मां बच्चे के ऊपर इतनी सारी मेहनत करके रात जागे, कपड़े पहनाए, खाना बनाए, क्या पैसा कुछ चाहती है उससे? क्या उसके हृदय में करुणा है, दया है, इसलिए वो करती है। ऐसे जब तक कोई सत्संग करने वाला सत्संग में भाव नहीं होगा तब तक भगवान से उसका इंटरेस्ट मिला हुआ नहीं है। क्या प्रभुपाद जी यहां से अमेरिका पैसा कमाने गए थे क्या? कुछ पढ़ने गए थे? नहीं, देने गए थे। और जो आए उनको अपने हाथ से दे रहे थे, कुछ लेने की उनकी इच्छा नहीं थी। इसको कहते हैं वो वन इंटरेस्ट, एक भगवान का और भगवान के भक्त का एक ही उद्देश्य होना चाहिए। तो जब तक हृदय में करुणा नहीं है तब तक प्रचार लोगों के हृदय में परिवर्तन नहीं लाएगा। हृदय में करुणा होनी चाहिए प्रचार करने के लिए कि दूसरों का भला हो। भगवान इनके हृदय में आप बैठे हुए हैं, इनको संसार के भोग से बचाओ और आपके प्रेम भक्तिमय योग में आप इनको प्रेरणा देके लगाओ। मैं तो आपका प्रभुपाद का ये भाव हमेशा याद रखना चाहिए, भगवान मैं आपके हाथ में कठपुतली हूं, आप सबके हृदय में बैठे हुए हुए, आप मुझसे वो कहलाओ जिनसे ये आपके इच्छा के अनुसार जीवन में परिवर्तन लाए। तो ये प्रभुपाद के भाव को कथा करने से पहले अपने अंदर बिठाना चाहिए कि मैं कथा कर रहा हूं, मैं बड़ा कथाकार हूं, ये मूर्खता कभी नहीं आनी चाहिए। भागवत भगवान के द्वारा ही, वही किसी की वाणी में बैठ के कहना चाहे तो कह सकता है, कोई व्यक्ति कहे ये संभव नहीं है। इसका भाव ये है असल में, जिस व्यक्ति के हृदय में करुणा दया नहीं है कथा के लिए और सामने वाले का हित की भावना नहीं है, तो उनके जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा उनके जीवन में परिवर्तन। कौन सा? यहां परिवर्तन की बात कर रहे हैं। विप्लवों का मतलब रिवोल्यूशन। ऐसे वचन जनता अघ, अघ कहते हैं पाप, जनता के पाप में बहुत बड़ा आंदोलन लाएंगे। प्रभुपाद ने इंट्रोडक्शन में लिखा है, दिस भागवतम विल ब्रिंग द रिवोल्यूशन इन द सिनफुल लाइफ ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। ये पहली लाइन का अर्थ है। ऐसे वचन का वर्णन तीसरी लाइन में है। ये आप यदवाक जो है, यदवाक के बाद में पढ़ें, यदवाग उसके बाद पढ़ें, नामानि अनंत यशो अंकितानि। कौन से वचन? जिसमें अनंत भगवान के यश का वर्णन किया हो। अंकितानि, अंकितो, किताब है तो अंकित होगा, अंकित होगा मतलब लिखित हो। जिस वाणी में, जिस वचन में, जिस लेखनी से अनंत के यश का गुणगान किया हो। अनंत का अर्थ है भगवान का कोई अंत तो है नहीं, अनंत, इसका मतलब आप कितना भी लिखो पूरा नहीं कर सकते, जितना हो सके उतना लिखो। अगर ये होगा तो पापमय प्राणियों के जीवन में बहुत बड़ा आंदोलन स्थापित करके उनको पवित्र कर देगा। वो पवित्र अगले श्लोक से ले लो, क्या था अगले श्लोक में? हरि के यश को क्या करेगा? वो शब्द क्या था वहां? पवित्रम शब्द ना सीधा, तो पवित्र शब्द वहां से ले लो, क्योंकि ये धारावाहिक बाल बात चल रही है। पहले वाला शब्द भी इसके साथ जुड़ेगा तब काम करेगा, क्योंकि ये चलती हुई बात है। ये ऐसा नहीं है कि एक श्लोक अलग है, ये श्लोक बात चल रही है, बात चल रही है तो पहले कहा बाद में कहा वो सब आपस में साथ मिलता रहेगा। अब कहते हैं कि अरे उधर तो बड़े चित्रपद थे, उधर तो बड़े सुंदर कविता थी, बोला यहां, यहां लिखा है यस्मिन प्रतिश्लोकम अबध्यवतापि। यहां तो अगर सारे श्लोकों में अच्छी तरह से कोई कविता न हो अथवा उसकी लेखनी से कोई त्रुटि भी रह जाए तो परवाह नहीं, लेकिन हरि का गुण होना चाहिए। और तो आखिरी लाइन में कहता है श्रवंति गायंति गृहंति साधव। और जो साधु पुरुष हैं वो ऐसी शास्त्र को श्रवंति सुनते हैं, गायंती गाते हैं, और गृहंति का मतलब गुनगुनाते हैं। जब कोई सुनाने वाला होता है तो सुनते हैं, जब कोई सुनाने वाला होता है तो गायते हैं, जब दोनों नहीं होते हैं तो अकेले बैठ के गुनगुनाते हैं। और तीसरा वाला सबको रोज बैठ के भागवत के श्लोकों को गुनगुनाना चाहिए, घर में बैठ के गुनगुनाना चाहिए। सुनाने वाला रोज नहीं मिलेगा, सुनने वाला भी नहीं मिलेगा, लेकिन गुनगुनाना तो आपके बस में है ना, तो एक भागवत का किताब लेके रोज बैठ के घंटा आधा श्लोकों को गुनगुनाया करो। गुनगुनाने का मतलब पाठ करना, असल में पाठ करेंगे, सुनेंगे सुनाएंगे, या सुनेंगे सुनेंगे तब पाठ करेंगे तब सुनाएंगे, तो पाठ करना चाहिए रोज। तो अब इस श्लोक में, इस श्लोक के भावार्थ में प्रभुपाद जी का अपना अनुभव है कि मैं अंग्रेजी भाषा में ये शास्त्र लिखे, अंग्रेजी भाषा मेरी कोई मातृभाषा नहीं है, पता नहीं कितने इसके अंदर ग्रामर में, व्याकरण में त्रुटियां हो गई होंगी, इनकी लेखनी में, शब्दों के अर्थों को, लेकिन फिर भी क्योंकि इसमें हमारा उद्देश्य केवल हरि की महिमा, कृष्ण का गुणगान करना है, इसलिए हमें पूर्ण विश्वास है कि भले मानस इसको आदर से पढ़ेंगे और ये पूरे विश्व के अंदर एक आंदोलन स्थापित करेगा, एक रिवोल्यूशन इंकलाब लाएगा। ये प्रभुपाद जी के इस तात्पर्य में प्रभुपाद के भावों का वर्णन है। तो इस श्लोक का अर्थ क्या हो गया? एक तरफ तो वो शास्त्र है जिसके अंदर भोग की भावनाएं भरी हुई है और दूसरे तरफ ऐसा शास्त्र है जिसमें वासुदेव के यश की अनुकीर्ति की हुई है। तो ऐसा शास्त्र भले भाषा शास्त्री न हो, भले कविता में त्रुटियां हो, फिर भी अब द अल्टीमेट सुप्रीम लॉर्ड इज अ डिफरेंट क्रिएशन। इज अ डिफरेंट क्रिएशन का मतलब ये शास्त्र अलग है, लेकिन शब्द जो विसर्ग लिख के बहुत बड़ा सा, ये विसर्ग पता है, मैं कोई पढ़ के विचार करके नहीं आया था, अब मुझे लग रहा है कि विसर्ग लिखा है, इसलिए वह अनु है या विसर्ग है। तो इसका कोई हर एक शब्द के अंदर कुछ बहुत विशेष भाव होता है, अपना न समझ ले, क्रिएशन मेरी नहीं है। अब प्रभुपाद जी का तात्पर्य यह है, पहले तो कहे कि भले मानस की पहचान क्या है, गुणग्रही हो, कैसी भी स्थिति हो, कैसा भी बुरा वातावरण हो, उसमें से अच्छाई ढूंढ ले। इसको प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, गुड यूज ऑफ बैड बार्गेन। अभी भौतिक जगत में आए गए हैं, ये तो बार्गेन तो अच्छी नहीं है, लेकिन अब इसका गुड यूज कर सकते हैं, गुड यूज ऑफ बैड बार्गेन। और यहां पहली लाइन में क्या है, बुद्धिमान व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, गुणवान व्यक्ति जो बहुत बड़ा मननशील है, फिलोसोफर है, थिंकर है, वो क्या करेगा, बेकार में से भी अच्छा चुन लेगा। जैसे प्रभुपाद जी ने हिप्पी बेकार में से अच्छे अच्छे साधु चुन लिए, और फिर एक चाणक्य नीति के प्रभुपाद ने चार उदाहरण दिए हैं। गंदगी से भी हीरा निकाल लेना चाहिए, उपदेश कोई नीच जाति का अच्छा दे तो उसको ग्रहण कर लेना चाहिए, स्त्री अगर गुणवती है तो कहीं से भी कोई कुल न देखो उसको, उसको ग्रहण कर लेना चाहिए, और चौथी क्या चीज है, पहला क्या है, नेक्टर फ्रॉम द पॉइजन, विष में से भी अमृत को निकाल लेना चाहिए। विष में से अमृत को देवताओं ने निकाल लिया ना, विष निकला था फिर भी समुद्र से अमृत निकाल लिया। तो ये चाणक्य नीति है, ये चाणक्य नीति को प्रभुपाद ने यहां लिखा है पहले, लेकिन कहते हैं ये एक बड़ी बात नहीं है, दीज आर सम ऑफ द एथिकल इंस्ट्रक्शन फॉर एवरी वन इन ए प्लेस विथ एक्सेप्शन, ठीक है, विदाउट एक्सेप्शन, बट ए सेंट इज फार अबव द लेवल ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन। साधु इनसे बहुत ऊपर है, ये तो सामान्य लोगों की बात है, साधु इससे बहुत ऊपर है। क्या उसकी किस बात में ऊपर है, ये तो संसार की चीजों को चुन लेते हैं, लेकिन वो भगवान को चुन लेता है। साधु इसलिए ऊपर है, ये चार संसारी चीजें हैं, लेकिन साधु शास्त्र कैसा भी हो उसमें से भगवान को चुन लेता है, और केवल चुन नहीं लेता है, लेकिन उस भगवान के नाम को दूसरों तक पहुंचाता है। ये साधु की परिभाषा यहां है, वो ब्रॉडकास्टिंग द होली नेम, भगवान के गुणगान करता है और दूसरों को सुनाता है, और इससे ये जो जगत का वातावरण बहुत दूषित हो गया है उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। इसलिए श्रीमद् भागवत जो है लोगों को पागलपन से बचा लेंगी, वो सेन बना देंगी। कम से कम इतने तो बचे हैं भाई रोज सुबह आप लोग 8:30 बजे आ जाते हो, 10 बजे तक बैठते हो, काम का दिन है, सब दुकान में धंधे में जाते हैं, सब लोग अभी बैठ के हिसाब किताब करते होंगे, आप भागवत सुन रहे हो, तो कम से कम आप पागल होने से बच गए। आपके 5-7 बाल जो पहले गिरने थे बाद में गिरेंगे, सबके गिर रहे हैं लेकिन आपके बच जाएंगे, क्योंकि घर में बैठ के तो बाल ही अपने खींच के निकालने, और तो कोई काम करना नहीं, और क्या करेगा घर में बैठा बैठा। तो ये आप अपने ऊपर लगाओ कि आपको भागवत ने कुछ लाभ दिया कि नहीं दिया, आपके जीवन में परिवर्तन लाया कि नहीं लाया। तो ये ऐसे जीवन में परिवर्तन लाएगा। और प्रभुपाद जी फिर एक उस वक्त में, ये कब चाइना का वार कब हुआ पाकिस्तान, 62 में प्रभुपाद लिख रहे हैं, ये यहां उसके डेट का पता लगा तारीख का, कि कई जुगों से चाइना और भारत बहुत मित्र रहे, कितने मित्र रहे कि महाभारत के समय में चाइना से एक अक्षौणी सेना भगदत्त लेके दुर्योधन की तरफ आया। नहीं, भारत के साथ इतना उन वक्त में हस्तिनापुर का और चाइना का इतना संबंध था कि वहां मतलब पहले कभी लड़ाई हुई नहीं, और प्रभुपाद कहते अब ये दोनों लड़ रहे हैं, और जिस टुकड़े के लिए लड़ रहे हैं वहां कोई रह नहीं सकता। भाई वो ग्लेशियर के लिए लड़ रहे थे जहां कोई रह नहीं सकता, बर्फ पड़ी है, लेकिन दोनों लड़ रहे हैं, एक कलयुग का प्रभाव है। इसको दोनों को कुछ मिलने का नहीं है, लेकिन कलयुग ऐसा है, थोड़ी थोड़ी बात के ऊपर लोग लड़ेंगे। कलयुग के प्रभाव का प्रमाण यह है कि जब पहले क्या था, आना था, आना 54-58 ऐसे था ना, फिर पैसा आया, ये कब आया, ये भी 60s में आया मेरे ख्याल में, पैसे के साथ कब आया याद है, हम जब पढ़ते थे तो चार आना, आप समझ 60, ये भी 65, 6, ये 70 से पहले आया है, 65 और 70 के बीच में कहिए, ढूंढ लेना कब आया है, क्योंकि हमें तो वो खर्ची मिलती थी याद है, जो चार आना दो आना वाली थी। तो जब पैसे आए तो आप किसी को 54 देते थे, 25 पैसा लिखा होता है ना, तो सामने वाला आपको वापस 12 पैसे देता था। भाई दुआने में कितने हैं, 12 पैसे हो गए ना। तो एक आदमी कसाई के दुकान पे मांस लेने गया, आपको जगह गलत भी गया ना, तीर्थ तो कौए वाले पे गया ना, तो उसने 12 पैसे ली, बोला तुमने 13 क्यों रखे, मेरे को 12 देता है तुम 13 रखता है क्यों, मेरे को 13 दो तुम 12 रखो। भाई दोनों हैं तो दुआने में, भाई 25 था ना। और इतना झगड़ा हुआ, वो कसाई के पास जो मांस काटने वाला बड़ा सा फरसा पड़ा था उसका गर्दन काट दिया आधे पैसे के ऊपर, झगड़ा आधे पैसे का, वही 12 पैसे भी दुआना और 13 पैसे भी दुआना। तो कलयुग इतना भारी है कि आधा पैसा उसकी कोई वैल्यू नहीं है, फिर भी आदमी मार दिए। और ये चाइना और भारत उस धरती के ऊपर लड़ रहे हैं, धरती भी नहीं है, वो ऊपर बर्फ का पहाड़ के ऊपर लड़ रहे हैं, कोई किसी के काम का भी नहीं, लेकिन लड़ रहे हैं। प्रभुपाद जी का कहते हैं कि हमारे को कोई पॉलिटिक्स से कुछ नहीं लेना है, लिखते हैं हमारा कोई राजनीति से अर्थ नहीं है, लेकिन हम सिर्फ आपको इतना बताते हैं कि ये जो काम हो रहा है ये कलयुग के लिए कारण है, ये कलयुग का कमाल है कि ऐसा स्थिति लोगों की बना रखी है। बोला पहले ये लड़ते क्यों नहीं थे, क्योंकि पहले लोगों को भगवान का भय होता था और भाव होता था, अब तो ये सब लोग प्रचार करते थे भगवान की जरूरत ही नहीं है, जब से भगवान को निकाल दिया है तब से आपस में लड़ मर रहे हैं, तब से आपस में लड़ मर रहे हैं। रात एक मैसेज मेरे पास, मैं ऐसे देख रहा था, किसी गाड़ी में कुछ दोस्तों के साथ किसी की बच्ची जा रही थी, तो माँ ने कहा बेटी बहुत बड़ा रास्ता खतरनाक है, भयानक है, और ये लड़के भी इतने ज्यादा समझदार नहीं लग रहे हैं, कुछ पिए हुए लग रहे हैं, तुम भगवान को साथ ले जाओ, तुम्हारी रक्षा करे। तो उस बच्ची ने कहा माता जी भगवान के लिए गाड़ी में जगह तो नहीं है, एक सिर्फ पीछे पेटी पड़ी है उसके अंदर भगवान को बोलो बैठ जाए। मजाक उठाया, मजाक उड़ाया कि भगवान के लिए जगह नहीं है गाड़ी में, पीछे एक टंक पड़ी है उसमें डाल दो। आगे गए किसी मोड़ के ऊपर, गाड़ी का इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ कि गाड़ी कौन से मॉडल की थी कौन सी कंपनी वो पता नहीं लगा, कोई नहीं बचा, लेकिन वो पेटी ऐसे की ऐसी बची पड़ी थी। और पेटी बची पड़ी थी और पेटी खोली तो अंदर जो जो भी था उनके खाने की चीज थी, कौए थे, अंडे थे, एक अंडा भी नहीं फूटा। तो उसने जहां भगवान को बिठाया वहां कुछ नहीं फूटा, और जहां भगवान के लिए जगह नहीं थी वो सब समाप्त हो गया। उदाहरण उसने सिर्फ ये देखा, आप सोचो कि भगवान को कहां भेज रहे हो, जहां भेजा वहां तो वो पेटी फूटी नहीं, और पेटी के अंदर जो अंडे थे वो भी नहीं फूटे, और बाकी सब मर गए, गाड़ी का निशान भी नहीं रहा। आश्चर्य लगता है, ऐसे बहुत कई बार देखा है, ऐसे होता है, हमको समझ में नहीं आता है, लेकिन ऐसी बहुत सी चीजें होती है। तो ये जब से भगवत भावना संसार से चली गई है तब से लोगों के अंदर ऐसे झगड़ा कलयुग के कारण बहुत सरलता से छोटी बातों पे होने लग गया है। अब एक और चीज यहां पढ़ लीजिए, पवन, इसलिए इस भागवत के संदेश को पूरे विश्व में फैलाने की बहुत जरूरत है, और ये हर एक का कर्तव्य है, और हर एक की ये जवाबदारी है, और विशेष रूप से क्या लिखा है, रेस्पॉन्सिबल किसकी है, इट्स द ड्यूटी ऑफ एवरी रेस्पॉन्सिबल इंडियन। हर एक जवाबदार, हर एक जिम्मेवार भारती का ये कर्तव्य है कि वो श्रीमद् भागवत के संदेश को पूरे विश्व में फैलाने का काम करे, और इससे पूरे विश्व को लाभ होगा और विश्व की शांति होगी। और फिर प्रभुपाद लिखें, क्योंकि इंडिया ने, भारतवासियों ने ये कार्य नहीं किया अपने भागवत के संदेश को विश्व में प्रचार करने के काम को भुला दिया, और इसके कारण सारी दुनिया के अंदर लड़ाई, झगड़ा, परेशानियां पड़ी हैं। अब प्रभुपाद ने भारत को पूरे विश्व के अंदर अशांति का कारण बताया। भारत कैसे कारण, भारत तो बहुत शांत देश है, बोले शांत देश है, लेकिन बहुत शांत होकर सो गया, भागवत का संदेश गांव घर घर तक नहीं पहुंचाया। और श्रील प्रभुपाद ने ये कार्य अकेले व्यक्ति ने किया, इससे पहले भी बहुत से लोग गए हैं भारत से, लेकिन भागवत लेके कोई नहीं गया। भागवत लेके नहीं गया इसलिए कोई परिवर्तन नहीं हुआ, योग लेके गए और लोगों को और भोगी बना दिया। तो ये तीन लाइन है, अंडरलाइन करना चाहिए, ये प्रभुपाद का एक तो अपना जीवन का जो कहा है वो किया, ये बहुत बड़ी बात है। ये आचार्य के शब्द हैं, आचार्य वो है जो कहता है वो करता है। प्रभुपाद जी ज्ञान लिख रहे हैं तब गए नहीं है, कोई चांस नहीं था कि वो अमेरिका जाएंगे। 62 में प्रभुपाद के दिमाग में भी नहीं था कि मैं कोई यहां से अमेरिका जाऊंगा या भागवत का प्रचार करूंगा, लेकिन लिखा है कि हर रेस्पॉन्सिबल भारतवासी को करना चाहिए, और एक ही भारतवासी रिस्पॉन्सिबल मिला जो ये काम करने के लिए निकला, और वो भी 70 साल में निकला, और इतना बड़ा आंदोलन स्थापित किया, आज दुनिया उसके ऊपर PhD कर रही है कि इस बूढ़े ने ये काम किया कैसे। तलवार की नोक के ऊपर तो लोगों ने मजहब बदले हैं, पैसे की लालच के ऊपर तो लोगों ने मजहब बदले हैं, लेकिन न इसके पास तलवार थी, न बंदूक थी, न पैसा था, इसने कैसे लोगों का दिल बदला, ये लोग अभी तक समझ नहीं पा रहे, ये पता नहीं। और प्रभुपाद कहते हैं ये भागवत ने किया है, मैंने नहीं किया, ये जो इनकलाब है, ये जो रिवॉल्यूशन है, ये भागवत का काम है, ये मेरा नहीं है। और ये भागवत के ही पुस्तक को प्रभुपाद ने पहले वितरण किया, ये प्रभुपाद की आचार्य की वाणी है, ये 62 की आचार्य वाणी, इसको लिखना चाहिए कि हर रिस्पॉन्सिबल भारतवासी का ये धर्म है, और अगर वो नहीं करेगा तो दुनिया में कभी शांति नहीं हो सकती। तो ये बहुत बड़ा गंभीर परपट, बहुत बड़ा गंभीर परपट है, इसलिए हम जल्दी आगे नहीं जा पा रहे हैं। और फिर ये प्रभुपाद का और एक भाव है कि ऐसा नहीं है कि गली गली में प्रचार भागवत का हुआ, लेकिन समझदार लोग अगर पहले करेंगे तो सामान्य लोग अपने आप उनके पीछे परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए प्रभुपाद ने पहली भागवत की प्रति जाके लाल बहादुर शास्त्री को दी। ये दूसरा आचार्य का वचन है, ये इसको उस दृष्टि से देखना चाहिए कि वो जो कह रहे हैं वो खुद कर रहे हैं, ऐसे नहीं है कि लिख दिया कि तुम करना, नहीं। जाके पहला लाल बहादुर शास्त्री को पहली कॉपी दी जाके, अगर एक प्राइम मिनिस्टर भागवत पढ़ेगा बदल जाएगा तो पूरा देश बदल जाएगा। एक बहुत बड़ा आदमी किसी को जाके, बिरला जी, उस वक्त में बिरला जी को दिया था वो लोगों, वो बिरला जी से राधा राधा दामोदर मंदिर की सेवा के लिए उस वक्त में रेगुलर दान आया करता था, वो प्रभुपाद के कारण। प्रभुपाद ऐसे बहुत बड़े लोगों को जाके प्रचार करते थे। ये प्रहलाद का भाव है कि बड़े से बड़े लोगों में हिरण्याकश जैसे राजा को भी जबरदस्ती प्रचार करने में हिम्मत रखता हो ये प्रहलाद, और छोटे बच्चों को भी प्रचार करता था। वो गांव के बच्चों को भी प्रचार करने में उनको कोई गिलानी नहीं थी, और बड़े से बड़े आदमी से भी प्रचार करने में उसको कोई परेशानी नहीं थी। क्या आप कुछ कह रहे थे? नहीं, ये सब बड़े लोग। और चिट्ठी किसको लिखी थी पहले मंदिर न्यूयॉर्क में बनाने के लिए? सिंघानिया को, वो जो सीमेंट वाला है, और वो जेके वो देना चाह रहा था, लेकिन उस वक्त में गवर्नमेंट ने यहां से मनी ट्रांसफर नहीं की। तो प्रभुपाद की अप्रोच को देखो और हमारी अप्रोच को देखो। ये आचार्य ये लाइन है, मैं कभी इसको ऐसे ध्यान नहीं दिया जैसे आज ये प्रकट हो रही है। आचार्य की वाणी, जो कहा वो किया, कहा नहीं कि तुम भागवत का प्रचार भार लो हर जमेवार, तो ये जमेवार मैं हूं। ये तो कृष्ण की वाणी का, इसको कहते हैं वननेस इन इंटरेस्ट। कृष्ण ने कहा जो जो श्रेष्ठ करेगा वो सब लोग करेंगे। उसके बाद दूसरा श्लोक क्या है कि मैं, मुझे कुछ नहीं करना है लेकिन मैं सब कुछ कर रहा हूं। पहले अपने आप को श्रेष्ठ की जगह पे कृष्ण ने खड़ा किया। तो उसी भाव में ये प्रभुपाद का तात्पर्य, इस प्रभुपाद के तात्पर्य में बहुत बड़े ये खजाना इसके अंदर बहुत पड़ा है, लेकिन बहुत लंबा है, इसलिए आप भाग जाओ 10 बजे। हरे कृष्ण, कल इसी को यहां से आगे पढ़े। मैं देख रहा हूं अब लोगों का मन भागवत में नहीं लग रहा है, भागवत से भाग रहा है। हरे कृष्ण।
देखिए एक बात खास ध्यान रखने की है जो हम इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं प्रेजेंटेशन में।